संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 15 मई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड 19 का बड़ा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी, प्रभावितों की हर मदद की पुकार। महामारी की आंच में झुलस रही दुनिया को राहत दिलाने में धार्मिक नेताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। बांग्लादेश के बहुत बड़े शरणार्थी शिविर में भी कोविड 19 के संक्रमण की दस्तक, एजेंसियां सतर्क। भारत में हाल ही में एक रासायनिक प्लांट में हुए गैस रिसाव पर गहरी चिंता, मानवाधिकार सुनिश्चित करने की पुकार। एशिया प्रशांत में इंसानी गतिविधियों और संसाधनों की मांग में अस्थायी कमी से समुद्री पर्यावरण को मिली राहत। और कोविड 19 से मुकाबला करने में संक्रामक मेडिकल कचरे के बेहतर प्रबंधन पर सुनिएगा एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना न भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN News Reader। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने वाली प्रणालियां दशकों से कम निवेश और उपेक्षा का शिकार रही हैं, और वैश्विक महामारी कोविड 19 ने इन कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इन खामियों, नशीली दवाओं के इस्तेमाल और आत्महत्या के बढ़ते मामलों से उपजी चिंताओं के बीच गुरुवार को सभी देशों से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी संकल्प लेने का आह्वान किया है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने जिनीवा में होने वाली विश्व स्वास्थ्य असेंबली से पहले एक अलर्ट जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि बढ़ते मानसिक दबावों का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। यूएन प्रमुख ने अपने वीडियो संदेश में अवसाद और बेचैनी सहित अन्य मनोवैज्ञानिक मुश्किलों को दुनिया में पीड़ा के सबसे बड़े कारणों में शामिल बताया।
The COVID-19 virus is not only attacking our physical health, it is also increasing psychological suffering. Grief at the loss of loved ones, shock at the loss of jobs, isolation and restrictions on movement, difficult family dynamics, uncertainty and fear for the future.
कोविड 19 न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर हमला कर रहा है, इसने मनोवैज्ञानिक तकलीफें भी बढ़ा दी हैं। प्रियजनों के खो जाने का शोक, कामकाज खो जाने का झटका, तन्हाई और आवागमन पर लगी पाबंदियां, कठिन पारिवारिक समीकरण, भविष्य के लिए अनिश्चितता व डर। यूएन महासचिव के मुताबिक कथित सामाजिक कलंक और भेदभाव का शिकार होने से अक्सर ये पीड़ा और भी गहरी हो जाती है। यूएन के अनुसार कोविड 19 महामारी से पहले भी मानसिक विषाद यानी डिप्रेशन और चिंता या बेचैनी यानी एंग्जायटी जैसी समस्याएं विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग $1 trillion के नुकसान के लिए जिम्मेदार थीं।
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional mental stress. Those most at risk are frontline health workers, older people, adolescents and young people, those with pre-existing mental health conditions, and those caught up in conflict and crisis. We must help them and stand by them.
सबसे ज्यादा जोखिम में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्ग लोग, किशोर और युवा लोग, मानसिक स्वास्थ्य के पीड़ित व संघर्षों और संकटों में फंसे हुए लोग शामिल हैं। हमें उनकी मदद करनी है और उनका साथ देना है। महामारी पर काबू पा लिए जाने के बाद भी शोक, चिंता और अवसाद बहुत से लोगों व समुदायों को प्रभावित करते रहेंगे। सभी नीतियों में मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों वाले लोगों की देखभाल, उनकी मदद और उनके मानवाधिकारों व गरिमा की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन यानी अवसाद से पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के आधे से ज्यादा मामले 14 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड 19 की आंच में झुलस रही दुनिया को राहत दिलाने में धार्मिक नेताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन चार प्रमुख क्षेत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिनमें एकजुट कार्रवाई को बढ़ावा देने में धर्मगुरु अपना सहयोग दे सकते हैं। एक डिस्पैच के साथ अंशु शर्मा।
इस कार्यक्रम में यूएन महासभा के प्रमुख तिजानी मोहम्मद बांडे, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के उच्च प्रतिनिधि मिगेल मोर्तिनोस और जनसंहार की रोकथाम के लिए यूएन महासचिव के विशेष सलाहकार अडामा डियांग सहित ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। यूएन प्रमुख ने कोविड-19 से निपटने में धार्मिक हस्तियों की भूमिका के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा संकट पहले की चुनौतियों से बहुत अलग है।
After all, the pandemic has no regard for religious or spiritual distinctions. It does not care about national borders.
महामारी के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक भिन्नताओं के कोई मायने नहीं है। ये राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह नहीं करती। हम सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं और यही साझा निर्बलता हमारी साझा मानवता को प्रदर्शित करती है।
महासचिव गुटेरेश ने कहा कि जवाबी कार्रवाई की नींव में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में धार्मिक नेताओं की अहम भूमिका होगी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि एचआईवी एड्स से इबोला तक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में धार्मिक नेताओं ने लोगों के मूल्यों, रवैयों, व्यवहारों और कार्यों को प्रभावित किया था और इस बार भी अपनी भिन्नताओं को दरकिनार करते हुए एक साथ मिलकर काम करना होगा और साझा मूल्यों को कार्रवाई में बदलना होगा। इसके लिए यूएन प्रमुख ने चार प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। पहला, गलत और हानिकारक संदेशों से निपटना, अहिंसा को बढ़ावा देना। दूसरा, घरों में शांति कायम रखना, महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा की निंदा करना और साझेदारी, समानता, सम्मान और करुणा के साझा सिद्धांतों को समर्थन देना। तीसरा, जानबूझकर या अनजाने में फैलाई गई गलत जानकारियों पर अपने नेटवर्क और पहुंच के जरिए रोक लगाने में मदद करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करना। चौथा, करोड़ों छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता बरकरार रखना और संगठनों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना कि पढ़ाई लिखाई जारी रह सके।
वैश्विक महामारी के कारण अब तक 42 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों वाले इलाकों में भी संक्रमण की दस्तक दे दी है, जहां 2 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उधर 140 से ज्यादा विश्व नेताओं और हस्तियों ने कोविड-19 वैक्सीन और उपचार को पेटेंट से मुक्त और लोगों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराने की पुकार लगाई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने भी कहा है कि महामारी पर तभी काबू पाया जा सकेगा जब असरदार वैक्सीन और उपचार को सभी लोगों तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। कोविड-19 पर एक अपडेट के साथ सचिन गौड़।
बांग्लादेश के कॉक्सिस बाजार में एक रोहिंग्या शरणार्थी और स्थानीय बांग्लादेशी समुदाय में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिनेवा में यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता आंद्रेज महचिच ने जानकारी देते हुए बताया,
There are serious concerns about potentially severe impact of the virus in a densely populated refugee settlement.
घनी आबादी वाले शरणार्थी स्थलों में वायरस का संभावित गंभीर असर होने पर गहरी चिंता है, जहां लगभग 8,60,000 रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली हुई है। आसपास के इलाकों में स्थानीय मेजबान समुदायों में लगभग 4 लाख बांग्लादेशी रहते हैं। वैश्विक स्तर पर इस महामारी में ये समुदाय सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसमूह में है। मॉनसून के आगमन से ठीक पहले हालात की गंभीरता के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कॉक्सिस बाजार में समन्वित रूप से आपात उपायों पर अमल करना शुरू कर दिया है। इन प्रयासों के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इंतजामों को पुख्ता बनाया गया है और आइसोलेशन वार्ड, उपचार केंद्र और क्वारंटीन केंद्र पर काम चल रहा है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए $32 करोड़ की धनराशि की अपील की गई है। इस बीच गुरुवार को 140 से ज्यादा विश्व नेताओं और अन्य हस्तियों ने एक खुले खत पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ जनता वैक्सीन को सभी लोगों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साझा पत्र में नेताओं ने कहा है कि सभी वैक्सीन, उपचार और परीक्षण पेटेंट से मुक्त होने चाहिए, उनका सामूहिक स्तर पर उत्पादन और न्यायसंगत वितरण होना चाहिए, ताकि सभी देशों में सभी लोगों तक उन्हें निःशुल्क पहुंचाया जा सके। शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने भी कहा कि दुनिया भर में असरदार वैक्सीन और उपचार विकसित करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें सभी लोगों तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण होगा।
These tools provide additional hope of overcoming COVID-19.
इन औजारों से COVID-19 पर काबू पाने की उम्मीदें बंधती हैं, लेकिन उनसे वैश्विक महामारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर व्यक्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित न की जाए। बाजार के पारंपरिक मॉडलों के जरिए विश्व भर में इसे संभव नहीं बनाया जा सकेगा। इसके लिए सरकारों और निजी सेक्टर में एकजुटता का होना बेहद आवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ मानवाधिकार विशेषज्ञ बास्कु तुंचक ने कहा है कि भारत में पिछले सप्ताह एक केमिकल प्लांट यानी रासायनिक संयंत्र में घातक गैस का रिसाव होना रसायन उद्योग जगत को नींद से जगा देने वाली घंटी है। उन्होंने आगाह किया कि मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए व्यवसायों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। 7 मई को आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम शहर के पास स्थित एक रसायन फैक्ट्री में स्टायरीन गैस रिस जाने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। स्टायरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे कैंसर बीमारी के अलावा स्नायु तंत्र और प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुँचने का भी खतरा होता है, और ये प्रभाव अक्सर गैस के संपर्क में आने के कई वर्षों बाद दिखाई देते हैं। ये रासायनिक संयंत्र दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी कैम द्वारा संचालित है। खतरनाक पदार्थों और कचरे संबंधी मामलों पर विशेष रिपोर्टर तुंचक ने हाल ही में हुई त्रासदी की तुलना 1984 में भारत के भोपाल प्रदेश में हुई जहरीली गैस लीक होने की घटना से करने को ठीक बताया। वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण दुनिया के अनेक देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ बढ़ा है और जरूरी सेवाओं में व्यवधान आया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गंभीर हालात के मद्देनजर आशंका जताई है कि तत्काल उपायों के अभाव में अगले 6 महीनों के दौरान हर दिन 5 साल से कम उम्र के अतिरिक्त 6000 बच्चों की मौतें हो सकती हैं, जबकि इन्हें टाला जा सकता है। बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए यूएन एजेंसी ने $1.60 अरब की रकम जुटाने की अपील की है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने इस साल मार्च महीने में $65 करोड़ की राहत के लिए अपील जारी की थी, लेकिन राहत सामग्री की बढ़ती कीमतों और परिवहन की लागत में बढ़ोतरी के कारण अपील का दायरा बढ़ाकर अब $1.5 अरब किया गया है। नया विश्लेषण दर्शाता है कि अगले 6 महीनों के दौरान हर दिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 6000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। कम और मध्य आय वाले 118 देशों में हालात के विश्लेषण में 3 परिदृश्य उभरे हैं, जिनमें सबसे खराब परिस्थितियों से ये आंकड़े लिए गए हैं। नियमित टीकाकरण सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता करोड़ों बच्चों के लिए पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिससे उनके जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। दुनिया भर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में 70% बच्चे उन 132 देशों में रह रहे हैं जहां COVID-19 के कारण आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गई हैं। गतिविधियों पर पाबंदी होने, स्कूल बंद होने और अलग थलग पड़ जाने का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है, और इससे नाजुक हालात में रह रहे युवाओं में तनाव का स्तर और बढ़ सकता है। आवाजाही पर पाबंदियों और बिगड़ती सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में रह रहे बच्चों का हिंसा व उपेक्षा का शिकार बनने की आशंका ज्यादा है। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए यौन व लिंग आधारित हिंसा का जोखिम भी बढ़ गया है।
हाल के वर्षों में समुद्री प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्य पालन और तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र के महासागरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि COVID-19 महामारी के कारण इंसानी गतिविधियों, मानवीय गतिशीलता और संसाधनों की मांग अस्थायी रूप से बंद होने से समुद्री पर्यावरण को राहत मिली है। रिपोर्ट के अनुसार देश अगर पुनर्बहाली पर बड़े पैमाने पर निवेश करें तो COVID-19 खत्म होने के बाद समुद्री स्थिरता व ज्यादा बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 से मुकाबला करने में संक्रामक मेडिकल कचरे के बेहतर प्रबंधन की अहम भूमिका है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के दौरान प्रतिदिन एकत्र होने वाले मेडिकल कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कचरे के प्रबंधन में असावधानी बरते जाने से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ जाता है और इस वजह से उपयुक्त सुरक्षा उपायों व मानकों का पालन करना अहम है। दिल्ली में यूएन न्यूज हिंदी की सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के भारत कार्यालय में रसायन एवं पर्यावरण प्रबंधन विभाग के प्रमुख सतीश बाबू से एक खास बातचीत में पूछा कि मेडिकल कचरे के प्रबंधन के लिए किन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है।
COVID-19 बहुत आसानी से फैलने वाली बीमारी है, तो ऐसे में एक मुद्दा जो सबसे अहम हो जाता है वो ये है कि जहां अस्पतालों में कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है वहां किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट से संक्रमण ना फैले। इन हालात में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या अहमियत है?
हॉस्पिटल्स में तो बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स वो सब ऑलरेडी है, तो उस मामले में खूब ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन जहां पे नया क्वारंटाइन जगह चुना गया था, जैसे कि किसी कुछ गवर्नमेंट को होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स माना गया था कुछ स्टेट्स में, उस जगह पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स नहीं रहते हैं, तो वहां पे वो प्रोटोकॉल इमिडिएटली बनाना पड़ेगा। और जो भी ये कोविड रिलेटेड वेस्ट जनरेट होती है तो उसको सही ढंग से कलेक्ट करके कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये जो कनेक्शंस आए जो इमीडिएटली जो नया क्वारंटाइन सेंटर से कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी तक, वो सब करने का अर्बन लोकल बॉडीज का जिम्मेदारी है। घर में कुछ लोगों के लिए सेल्फ आइसोलेशन लेना पड़ता है, तो वहां पे गाइडलाइंस CPCP का गाइडलाइंस ये कहता है कि जो भी मास्क यूज करते हैं, जो भी कोविड रिलेटेड कॉन्टैक्ट में आते हैं, इन्फेक्शियस पर्सन से कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो सारे चीज सीजर्स करना पड़ेगा, छोटा सा पीसेस में काट के एक पेपर के लिफाफे में रखना पड़ता है 72 आवर्स, उसके बाद में उसको कूड़े का उसमें डस्टबिन में डाला जा सकता है, तब उसको जनरल वेस्ट माना जाता है। लेकिन तुरंत उसको जो भी घर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है तो उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन दिया गया है, उसे जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को घर में आकर कलेक्ट करते हैं उनको वो इन्फेक्शन पास नहीं होगा।
तो आपने मेडिकल गाइडलाइंस की बात की वेस्ट डिस्पोजल के लिए, तो भारत में मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए किस तरह की गाइडलाइंस है, और क्या इन हालात में COVID-19 के हालात में कोई नई गाइडलाइंस सामने आई है?
वैसे तो भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 से है, तो मतलब 20 साल से ऊपर का हमारा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये 2016 में ये नया बायोमेडिकल रूल्स बनाए गए थे और 2018 में फिर से उसको एमेंड किया गया है, तो काफी एक्सपीरियंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में है। लेकिन ये जो कोविड आया हुआ है ये ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट है। पहले भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स में मान लीजिए करीब हमें 560 टन पर डे का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता था 2019 में की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, लेकिन आज कोविड की वजह से जब 559 टन पर डे है तो उसमें देखा जाए तो 10% इन्फेक्शियस वेस्ट रहता था और ज्यादा 85% जो है वो ना हजार्डस मटेरियल है ना इन्फेक्शियस मटेरियल है, ओनली 5% हजार्डस वेस्ट होता था। अभी क्या हो रहा है, ये परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट ये बढ़ गया है। CPCP ने पहले एक गाइडलाइंस ले आया है, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपना कंसर्न रेज किया था कि भाई ये डोमेस्टिक वेस्ट में ये कोविड का वेस्ट जा नहीं रहा है, वो कैसे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो इतने सारे कोविड रिलेटेड वेस्ट बनते जा रहा है तो ये बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा चेन इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, प्रॉपरली डिस्पोज कर रहा है। ये उन्होंने एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा गया था कि मेक श्योर दैट गाइडलाइंस आर कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस बनाए, हर चीज को ध्यान में रख के, और वो ये भी देखा कि इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर करने की जरूरत है। इसीलिए CPCP ने सेकेंड टाइम्स ओनली कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस दोबारा ले आया गया।
ये पूरा इंटरव्यू हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें अनेक पहलुओं पर बातचीत की गई है। हमारी वेबसाइट का पता हम एक बार फिर बता देते हैं, news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।